मरकुस अध्याय 6। यीशु वहां से निकलकर अपने देश में आए और उनके शिष्य उनके साथ साथ थे। सबत के दिन यीशु उनके आराधनालय में उन्हें सिखाने लगे। उन्हें सुनकर लोग आश्चर्य से भर गए और आपस में कहने लगे,
ये ज्ञान इस व्यक्ति को कहां से मिल गया? ये भी कि एक ऐसा ज्ञान है कि उनके द्वारा महान काम होते हैं। क्या ये बढ़ई नहीं है जो मरियम का बेटा याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या इसकी बहनें हमारे साथ नहीं है?
इस तरह से लोगों के मन में शिकायत थी, लेकिन यीशु उनसे बोले,
एक नबी अपने जन्म स्थान, अपने घर और अपने रिश्तेदारों में बेइज्जत होता है।
कुछ बीमारों पर हाथ रखने और उन्हें ठीक करने के अलावा यीशु कोई बड़ा काम वहां ना कर सके। उनके अविश्वास पर यीशु को शक तो हुआ, लेकिन वो एक गांव से दूसरे गांव लोगों में सिखाते गए। यीशु बारों को बुलाकर दो दो करके भेजते गए और भूत प्रेत के ऊपर अधिकार दिया। सफर में जाते समय उन्होंने एक लाठी के अलावा जैसे झोला, रोटी और पैसा आदि लेने को मना किया। यीशु ने चप्पल पहनने के लिए कहा, लेकिन एक से ज्यादा कमीज लेने को मना किया। यीशु ने उनसे कहा, जब कभी तुम किसी घर में दाखिल हो, जगह छोड़ने से पहले वहीं रहो। जो कोई तुम्हें ना अपनाए या तुम्हारी ना सुने, जब तुम वो जगह छोड़ो, उनके खिलाफ एक सबूत के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इंसाफ के दिन इस शहर से ज्यादा सहनीय सदोम और अमोरा की हालत होगी। वहां से जाने के बाद वह ये घोषणा करने लगे कि सबको मन बदलने की जरूरत है। उन्होंने बहुत से भूतों को निकाला और बीमार लोगों पर तेल लगाकर ठीक कर दिया। हेरोदेस राजा ने यीशु के बारे में सुन रखा था, क्योंकि यीशु मशहूर हो चुके थे। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, इसलिए वह आश्चर्य के काम कर रहा है। दूसरों ने कहा,
ये एलिया है,
और दूसरों ने यह कि ये पुराने समय के भविष्यवक्ता की तरह ही है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा,
हो न हो, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है, जिसका मैंने सिर कटवाया था, वह मुर्दों में से जी उठा है।
इसलिए कि खुद हेरोदेस ने आदमियों को भेजकर उसे जेल में जंजीर से बंधवा दिया था, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी को ब्याह लिया था। यूहन्ना ने हेरोदेस को कहा था,
अपने भाई की बीवी को रखना गैर कानूनी है।
इसलिए हेरोदियास उससे नफरत करती थी और जान से मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना कर सकी थी, इसलिए कि यूहन्ना ईमानदार और खरा इंसान था। हेरोदेस ने डर की वजह से उसे बचा रखा। हालांकि हेरोदेस बड़ी खुशी से यूहन्ना की सुना करता था, लेकिन उसमें बड़ी घबराहट भी थी। एक समय आया जब अपने जन्मदिन के अवसर पर शाही खानदान के लोगों, फौजी अफसरों और गलील के माननीय सदस्यों को हेरोदेस ने दावत पर बुलाया। जब हेरोदियास की बेटी ने आकर नाचा और हेरोदेस तथा आए हुए मेहमानों को खुश कर दिया, राजा ने लड़की से कहा,
तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा।
उसने कसम खाते हुए कहा,
तुम मुझसे जो कुछ मांगोगी मैं दूंगा, यहाँ तक कि आधा राज्य तक।
बाहर जाकर लड़की अपनी माँ से बोली,
मैं क्या मांगू?
माँ ने कहा,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर।
तुरंत लड़की भागकर राजा के पास गई और बोली,
मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में चाहिए।
तब राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो वचन दे चुका था और बैठे लोगों को भी सब मालूम था। वो अपनी कही बात से मुकर ना सका। उसी वक्त राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसका सिर लाया जाए। जेल में जाकर सिपाहियों ने उसका सिर काटा और थाली में रख आकर लड़की को दे दिया। उस लड़की ने सिर अपनी माँ को दे दिया। जब उसके शिष्यों ने यह सब सुना तो आए, उसकी लाश उठाई और कब्र में रख दी। शिष्य यीशु के चारों तरफ इकट्ठे हुए और सब कुछ बता दिया, वह सब जो उन्होंने किया था और जो कुछ सिखलाया था। लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उनके पास खाने का समय नहीं था, यीशु ने उनसे कहा,
सुनसान जगह जाकर थोड़ा आराम कर लो।
और वो सभी एक नाव पर बैठकर वीरान जगह चले गए। लोगों ने उन सभी को रवाना होते हुए देखा था। बहुतों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के इलाकों से पैदल ही निकल पड़े। वो यीशु से पहले वहां पहुंचे और इकट्ठे हो गए। नाव से उतरते ही यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा। यीशु उन्हें देखकर तरस से भर गए, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था। यीशु उन्हें सिखाने लगे। जब दिन ढल चुका, यीशु के शिष्य उनके पास आकर कहने लगे,
ये सुनसान जगह है और बहुत देर हो चुकी है, इन्हें भेज दीजिए ताकि आसपास की बस्ती और गांव में जाकर वे अपने लिए रोटी खरीदें, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था।
यीशु ने कहा,
तुम ही उन्हें खाने के लिए कुछ दो।
शिष्यों ने कहा,
क्या हम बाजार जाकर 200 चांदी के सिक्कों से रोटी लाकर इनको परोसें?
यीशु ने उनसे कहा,
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ और देखो।
मालूम करके उन्होंने बताया कि एक लड़के के पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि सभी को घास पर झुंड में बिठाया जाए। वो 100 और 50-50 के झुंड में वहां बैठ गए। तब 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर यीशु ने आसमान की तरफ देखते हुए रोटियों पर आशीर्वाद मांग कर तोड़ते हुए शिष्यों को दी कि वे लोगों को बांट दें। वे सभी खाकर तृप्त हो गए। खाने के बाद उन्होंने बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे उठाए और मछलियां भी। रोटी खाने वालों की संख्या लगभग 5,000 पुरुषों की थी। तुरंत यीशु ने अपने शिष्यों को नाव में बिठाया ताकि वो उस पार बैतसैदा पहले पहुंच जाएं। और इसी बीच यीशु ने लोगों को भी विदा कर दिया। उन लोगों को भेज देने के बाद यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए। शाम के समय नाव जब झील के बीच में थी, सिर्फ यीशु ही किनारे पर थे, इसलिए कि जोरों की हवा चल रही थी। यीशु ने उन्हें हवा के विरोध में बहुत संघर्ष करते हुए देखा। लगभग 4 बजे सुबह यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आए। लेकिन जब उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए देखा तो उन्हें भूत समझकर चिल्ला पड़े। वे सभी यीशु को देखकर घबरा गए। तुरंत यीशु बोल उठे,
हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत।
उनके साथ यीशु नाव में बैठ गए और आंधी भी थम गई। अपने मन ही मन में वो बहुत ज्यादा आश्चर्य से भर गए थे। उनके मन कठोर हो जाने की वजह से उन्होंने रोटियों के आश्चर्य कर्म पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब वे पार उतर गए तो गन्नेसरत के तट पर आ गए। नाव के बाहर आते ही लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। जहां जहां वे जाते थे, लोग आसपास के इलाकों से अपने बीमारों को चारपाइयों पर लिटाकर चले आते थे। जहां कहीं यीशु गए, गांव, शहर या बस्ती, लोग अपने बीमारों को बाजारों में लाकर उनसे विनती करते थे कि यीशु अपने वस्त्र के छोर को छूने दे। जितनों ने उन्हें छुआ वो अच्छे हो गए।